الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ان شاء الله تعالی آداب زندگی میں ہم آج خوشی کے آداب پڑھیں گے. ہم نے رنج و غم کے آداب پہلے پڑھ لیے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں زندگی کا حصہ ہے غم بھی اور خوشیاں بھی, اور یہی ہمارے امتحان کے اوقات ہوتے ہیں. جب انسان کے اوپر انٹینس کوئی پریشانی آئے, کوئی غم آئے, تو وہ بھی امتحان ہے اور خوشی بھی امتحان ہوتی ہے. جبکہ ہم غم کو تو امتحان سمجھ لیتے ہیں, کسی کو کوئی بیماری آ جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں امتحان ہے تمہارا. لیکن کتنی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں جب کسی کے اوپر کو کوئی خوشی ملتی ہے کہ یہ بھی تو امتحان ہے, کیونکہ نعمت کا مل جانا بھی امتحان ہے اور نعمت کا چھن جانا بھی امتحان ہے. تو خوشی کے بھی آداب ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ خوشی میں بھی آپ ایسے نہیں کہ آپ سے باہر ہی ہو جائے, خوشی کے بھی کوئی ایٹیکیٹس ہیں, خوشی کے بھی کوئی طریقے ہیں. تو دیکھتے ہیں خوشی کے آداب. خوشی کے مواقع پر خوشی ضرور منائیے. خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے دین کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بصوری صورت بنا کے رکھیں اور گرے ہوئے رہیں اور بس اپنے آپ کو ایسے دکھائیں کہ میں بہت غمگین ہوں تو یہ دین داری ہے یا یہ نیکی ہے. ایسی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ مسکرانے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حدود اور شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. دین ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی وقار, غیر مطلوب سنجیدگی, ہر وقت کی مردہ دلی اور افسردگی سے اپنے کردار کی کشش کو ختم کر دیں. وہ خوشی کے تمام جائز مواقع پر خوشی منانے کا پورا پورا حق دیتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں, تازہ ولولوں اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہیں. جائز مواقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے. لیکن جو جائز مقامات ہیں خوشی کے, اگر آپ اس پہ خوشی نہیں مناتے اور سوچتے ہیں کہ یہ دین ہے کہ اس پہ کوئی خوش نہ ہوا جائے, اور دین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خوشی کر سکتے, تو یہ اس کا مطلب دین کی سمجھ نہیں ہے. کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, لوگوں کو بعض دفعہ اس چیز کے اوپر بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے کیسے پہن لیے. یعنی آپ تو بالکل دینی نہیں ہیں, بالکل آپ کو سفید کپڑے پہننے چاہیے اوپر سے نیچے تک, یا ہر بار کالے ابائے میں آپ کو نظر آنا چاہیے, تب آپ دیندار ہیں. تو ایسا نہیں ہے, دین یہ ہمیں نہیں کہتا. جب دین کی صحیح سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ کو دین کی صحیح سمجھ آئے. ایکسٹریم ایک طرف بھی چلے جانا وہ بھی درست نہیں ہے. آپ کو کسی دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب ہو, آپ یا آپ کا کوئی عزیز علم اور فضل میں بلند مقام حاصل کرے, خدا آپ کو مال و دولت یا کسی اور نعمت سے نوازے, آپ کسی لمبے سفر سے بخیریت گھر واپس آئیں, آپ کا کوئی عزیز کسی دور دراز سفر سے آئے, آپ کے یہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو, آپ کے یہاں شادی بیاہ یا بچے کی پیدائش ہو, کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملے, یا اہل اسلام کے فتح و نصرت کی خوشخبری سنے, یا کوئی اور تہوار ہو, اس طرح کے تمام مواقع پر خوشی منانا آپ کا فطری حق ہے. سفر سے بھی کوئی بخیریت واپس آ جائے تو یہ بھی ایک خوشی کا ہی موقع ہے کہ خیر کے ساتھ واپس پہنچ گئے. کوئی بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے تو یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت یاب کیا. اسی طرح صحابیات کہتی ہیں کہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی, اس دن ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن تھا, انہوں نے اس کو خوشی کی. ہماری طرح نہیں نا کہ آپے سے باہر ہو جائے, آپے سے باہر ہونا منع ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ خوشی ہی نہیں کر سکتے. اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری قرار دیتا ہے. حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میں نے جا کر سلام کیا, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو, اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ اس وقت انتہائی بتا, یعنی چہرہ بتاتا تھا کہ خوش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے. اور جب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تبوک کی جنگ کا واقعہ ہے کہ جس وقت یہ حضرت کعب بن مالک جو تھے ये पीछे रह गए थे मदीना में, और बस यही सोचते थे, ये नहीं थे कि मुनाफिक थे, पक्के मुसलमान थे, लेकिन उस वक्त तीन लोग जो मोमिन थे वो बस ऐसे, जिसको हम कहते हैं ना डिलेइंग, कि भाई अच्छा कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, करते करते वो पीछे ही रह गए। चांस हमेशा आपके पास नहीं रहता, याद रखें, चांस कोई मिलता है ना और आप सोचते हैं ना अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ, वो चांस चला जाता है, वो आपका वेट नहीं करेगा। आप सोचते हैं ये मौके यहीं पे रहेंगे, और अभी आपने कोविड में इस चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारी चीजों को आप फॉर ग्रांटेड लेते ना, यहीं पे हैं तो ये कर लूंगी तो क्या हो गया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने दिखाया सब कुछ बंद करके कि कोई चीज आपके हाथ में नहीं, और मौके हर वक्त हमेशा आपके हाथ में नहीं रहेंगे। त्योहार के मौके पर एहतमाम के साथ खूब खुलकर खुशी मनाइए, और तबीयत को जरा आजाद छोड़ दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो फरमाया, तुम साल में 2 दिन खुशियां मनाया करते थे, अब खुदा ने तुमको इनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। लिहाजा साल के इन दो इस्लामी त्योहारों को में खुशी और मुसरत का पूरा पूरा मुजाहरा कीजिए, और मिलजुल कर जरा खुली तबीयत से कुछ तफरी तबीयत के साथ कुछ तफरीही मशागिल फितरी अंदाज में इख्तियार कीजिए। इसीलिए इन दोनों त्योहारों में रोजा रखने की मुमानियत है। और हमारे लिए साल में सबसे बोरिंग दिन कौन सा होता है? ये बच्चे भी कहते हैं बोरिंग बोरिंग, तो हमने बोरिंग बना दिया ना उसको, बिल्कुल सोते ही रहते हैं जब सारा दिन, तो फिर क्या, ना ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे, ना कोई एहतमाम करेंगे। बाज लोग तो जॉब पे चले जाते हैं कि हम अपनी दिन क्यों वेस्ट करें, ईद पे क्या करना है हमने। मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी कि आप में से जिनके बच्चे जॉब्स पे हैं, जरूर उनको ये सिखाएं कि ईद पे आपने छुट्टी लेनी है। अगर आपने इसको लूज कर दिया तो याद रखिए आपकी जनरेशन को कभी पता नहीं चलेगा कि ईद क्या होती है। उनको ये तो पता चलेगा क्रिसमस क्या होती है, छुट्टी होती है उस दिन और हर तरफ क्रिसमस का पता चल रहा है, आपकी ईद का कैसे पता चलेगा? कोई और नहीं आपको बुलाता, आप अपने घर में ये तमाम कीजिए ताकि आपके बच्चों को पता चले कि ईद एक चीज होती है जिसमें हम खुशी मनाते हैं, जिसमें हम ड्रेस अप होते हैं, जिसमें हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, जिसमें हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, जिसमें कुछ ज्यादा हमारा एहतमाम होता है, तो ये हमारा एक स्पेशल दिन है। अगर कोई और नहीं, हम कहते हैं हमें तो कोई बुलाता नहीं, तो फिर बस खुद बैठे रहेंगे, नहीं, फिर आप उसको स्पेशल बनाइए। लेकिन हम खास तौर पे जो इन मुल्कों में रहते हैं, हमें इसको इम्पोर्टेंस देनी है। जो इस्लामी ममालिक में रहते हैं उनके लिए मसला नहीं है, हमारे लिए मसला, वरना ये लूज हो जाएगा हमसे। और यही चूंकि वो सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि हम अपना एक दिन क्यों बर्बाद करें छुट्टी का, हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी ना, तो हम उससे बेहतर है जब वेकेशन का टाइम आएगा उस वक्त छुट्टी ले लेंगे, वेकेशन हम क्यों जाया करें। तो आपके बच्चों को कैसे मालूम होगा? और ये वो 2 दिन है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए खुशी के दिए, वो उसकी कोई अहमियत नहीं। शादियों पे हम हफ्ता हफ्ता छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बच्चों को मौका दीजिए कि वो जायज किस्म की, नहीं ये मेरे पास मेरे ख्याल मिसिंग है, बच्चों को मौका दीजिए कि वो जायज किस्म की तफरी और खेलों से जी बहलाएं और खुल कर खुशी मनाएं। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि ईद का दिन था, कुछ लौंडियां बैठी वो अशार गा रही थी जो जंगे बुआस से मुतल्लिक अंसार ने कहे थे, कि इसी दौरान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाए और बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये गाना बजाना। वो लौंडियां बैठी हुई थी वो जंगे बुआस के, ऐसे नहीं कोई कोई हम देखें जो ऐसी अहादीस है ना उनको उतना ही लें जितनी है, बाज दफा हम उनको लेकर कहते उन्होंने भी तो इस तरह किया था, तो हम हर तरह के वो डेक लगा के और उसके ऊपर नाच गाने शुरू कर देना, कहते हैं उनके घर में भी था, उनके घर में जो हुआ था फिर वो भी देखें कि क्या था, दफ पे वो बच्चियां गा रही थी, ठीक है, और कोई बेहयाई किस्म के अशार नहीं थे, जंगे बवास के अशार थे। तो ये भी देखना चाहिए कि आप क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करें, ये भी देखना चाहिए कि आप क्या शायरी बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे अशार। और जिस वक्त हम खास तौर पे ऐसे मौके पे गाने लगते हैं ना, तो पता नहीं अक्ल ही पता नहीं किधर गुम हो जाती, कि हम अल्लाह ताला माफ करे मैं मस्जिद में बैठी हूँ, वो बोलना भी नहीं चाहती कि जे जे किसको कह रहे होते हम, आप सबको पता है, शंकर को कह रहे थे, शेवे शंकर को कह रहे थे, किसको कह रहे होते। और ऐसे ऐसे अशार होते हैं, रसूले पाक का साया मुबारक, रसूले पाक को क्यों ले आए उसमें, उनका साया क्या मुबारक हो, क्या व्हाट डज इट इवन मीन, इतने बेकार मीनिंगलेस, इतनी अजीबो गरीब बातें हम करते हैं, उसको हम सोचते हैं कि इससे स्टार्ट करो, ये जैसे कि बिस्मिल्ला, हाँ मैं अपनी सेंस भी तो यूज करें कुछ, फिर ऐसे ऐसे जो भी इंडिया का कोई गाना होगा उसको लेके वहां पे गाएंगे, और बिल्कुल अपनी कोई अक्ल इस्तेमाल ही नहीं करते कि हम बोल क्या रहे हैं, कहीं हम शिर्क तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो शिरकिया उनके जो भी वो अशार होते हैं, हम खुद तो सोचे कि हम ये बोल भी सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब मुझे किसी ने बताया कि ऐसा भी एक है कि तुझ में खुदा नजर आता है, इससे बड़ा क्या शिर्क होगा, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रहने दो, हर कौम के लिए त्योहार का दिन होता है और आज हमारी ईद का दिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, तो इतनी हद तक इजाजत हमें मिलती है। एक बार ईद के दिन कुछ हबशी बाजीगर फौजी करतब दिखा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करतब खुद भी देखे और आयशा रजी अल्लाह तआला को भी अपनी आड़ में लेकर दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बाजीगरों को शाबाश भी देते जाते थे। जब आयशा रजी अल्लाह तआला देखते देखते थक गई तो आपने फरमाया अच्छा आप जाओ, जब तक वो कहती नहीं कि मैंने देखना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखने दिया। खुशी मनाने में इस्लामी जौक और मिजाज और इस्लामी हिदायत और आदाब का जरूर लिहाज रखिए। अब देखें ये जैसे करतब है ना, जैसे आप कोई करतब देखते हैं कोई हर्ज नहीं है इसमें, आप कोई गेम्स खेलते हैं कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, आप तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि कुछ आप कोई बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, कोई भागने दौड़ने की कोई गेम्स खेल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ये सारे जायज ही काम है। तो देखना भी चाहिए कि हम अपनी खुशी को किस तरह से, यानी जैसे हमें अब पता चला कि खुशी मनाना ये नाजायज नहीं है, लेकिन हम अपनी खुशी को किस तरह से ऐसा बनाएं कि उसमें हम कोई गलत काम ना करें, कोई गुनाह का काम ना करें। क्या जरूरी है कि हमारी हर खुशी पे अल्लाह की नाफरमानी जरूर होनी चाहिए। जब आपको कोई खुशी हासिल हो तो खुशी देने वाले का शुक्र अदा कीजिए, सबसे ये पहली बात जो सबसे ज्यादा हम भूल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तो होता ही नहीं है, बल्कि खुशी के मौके पे तो ज्यादा ही अल्लाह ताला की बात भूल जाती, बल्कि इंसान गम में अल्लाह को याद करता है उठते बैठते लेटते, लेकिन खुशी में उसको अल्लाह ताला बिल्कुल भूल जाता है। पार्टी याद रहती है, अरेंजमेंट याद रहते हैं, कोई शादी है तो उसके अरेंजमेंट, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना नहीं याद रहता। जिन बच्चियों की शादियां हम इतने दुआएं मांग मांग के कि अल्लाह ताला इनके अच्छे रिश्ते मिल जाएं, बच्चों के बच्चियों के, उसके बाद जब मिलते हैं तो हमें कहाँ याद रहता है कि हम शुक्र भी तो अदा करें जिस रब ने हमें अब ये नेमत दी है। तो इसके हजूर सजदा शुक्र बजा लाई, आपको पता है नबी अलैहि सलातो सलाम को जब भी कोई खुशी मिलती थी तो आप सजदा शुक्र करते थे। सुभान अल्लाह, तो ये भी सुन्नत है सजदा शुक्र, इसके लिए कोई नमाज नहीं पढ़ने की जरूरत, सजदे में चले जाए। खुशी के हिजान में कोई ऐसा अमल या रवैया इख्तियार ना कीजिए जो इस्लामी मिजाज से मेल ना खाए और इस्लामी आदाब और हिदायत के खिलाफ हो। मुसरत का इजहार जरूर कीजिए, लेकिन एतदाल का बहरहाल ख्याल रखिए। मुसरत के इजहार में इस कदर आगे ना बढ़िए कि फख्र और गुरूर का इजहार होने लगे और नियाजमंदी बंदगी और आजी के जज्बात दबने लगे। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तफराहू बिमा अताकुम अल्लाह वल्लाह वला तफराहू बिमा अताकुम वल्लाहु ला युहिब्बुल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह ताला शेखी खोर को बड़ाई जताने वाले को पसंद नहीं करता, तो और उन नेमतों को पाकर इतराने ना लगो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है। तो अब आप देखें कि जब नेमतें हमें मिलती हैं तो फख्र गरूर इतराना और बड़ाइयां करना अपनी, ये ऐसी चीजें, इनसे परहेज किया जाए। ऐसे लगता है कि जैसे ये पता नहीं कौन से जमाने की बातें होंगी, क्योंकि हमारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। और खुशी में ऐसे सरमस्त ना हो जाइए कि खुदा की याद से गाफिल होने लगे। मोमिन की खुशी ये है कि वो खुशी देने वाले को और ज्यादा याद करे, उसके हजूर सजदा शुक्र बजा लाए और अपने अमल और गुफ्तार से खुदा के फजलो करम और अजमत और जलाल का और ज्यादा इजहार करे। तो यहाँ तक हम आज करते हैं इंशाअल्लाह ताला, फिर बाकी हम नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।